नमस्कार, आज हम श्रद्धेया जीजी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक बच्चों को उत्तराधिकार में धन नहीं गुण दें के एक खास अध्याय पर बात करेंगे।
जी, अध्याय का नाम है बच्चों को दंड नहीं दिशाएं दें। बहुत ही प्रासंगिक विषय है ये।
हाँ बिल्कुल, मतलब कैसे हम बच्चों को सजा देने के बजाय उन्हें सही रास्ता दिखाएं ताकि उनके अंदर अच्छे गुण पनप सकें, इसी पर आज हम थोड़ी गहराई से चर्चा करेंगे।
जरूर।
तो शुरुआत करते हैं एक मनोवैज्ञानिक प्रयोग से। ये दिखाता है कि माहौल मतलब वातावरण बच्चों पर कितना गहरा असर डाल सकता है।
हाँ, आपने वेल्स के मनोवैज्ञानिक हर्बर्ट क्रशर का जिक्र किया था ना?
जी जी, उन्होंने अपने ही दो बच्चों पर यह प्रयोग किया। एक के सामने वो थोड़ा मजाकिया, कह सकते हैं कि फूहड़ सा माहौल रखते थे,
और नतीजा?
नतीजा ये हुआ कि वो बच्चा बिगड़ गया, जबकि दूसरे बच्चे के सामने वो हमेशा गंभीर वैज्ञानिक बातें करते थे।
और वो बच्चा?
वो विज्ञान में काफी सफल हुआ। ये प्रयोग वाकई सोचने पर मजबूर करता है कि हम बच्चों को कैसा माहौल दे रहे हैं।
बिल्कुल, और डॉक्टर क्रेशर का जो निष्कर्ष था वो बहुत अहम है। उन्होंने कहा कि अगर अच्छा माहौल मिले तो किसी भी पृष्ठभूमि का बच्चा हो वो सुधर सकता है।
अच्छा,
और वहीं अगर माहौल बुरा हो तो अच्छे से अच्छे घर के बच्चे भी राह भटक सकते हैं। मतलब साफ है, हमारे विचार काफी हद तक हमारे वातावरण से ही उपजते हैं।
लेकिन क्या सिर्फ माहौल ही सब कुछ है? क्योंकि श्रद्धेया जीजी ये भी तो मानती हैं कि बच्चे बस कोई स्लेट नहीं होते।
सही कहा आपने, बच्चों के अपने विचार भी होते हैं, उनके पिछले जन्मों के संस्कार होते हैं,
और उनमें ना एक आत्म प्रदर्शन की इच्छा भी होती है, खुद को व्यक्त करने की।
हाँ बिल्कुल, जैसे बच्चे कभी टीचर बनकर पढ़ाने का खेल खेलते हैं
या कभी पिताजी का चश्मा पहनकर उनकी नकल करते हैं।
वही, और ये बहुत जरूरी है कि हम उनकी इस भावना को समझें। अगर ये रचनात्मक है तो उसे दबाएं नहीं बल्कि सहयोग दें।
जैसे कोई उदाहरण?
जैसे सर जगदीश चंद्र बोस का, बचपन में उन्हें पौधों से बहुत लगाव था। अगर उनके इस शौक को दबा दिया जाता तो शायद हमें इतने महान वनस्पति शास्त्री मिलते ही नहीं।
सही बात है। तो मतलब बच्चों की सुने, उनकी भाषा में बात करें।
हाँ, ताकि वो खुलकर अपनी बात कह सकें। जो बच्चे दब्बू रह जाते हैं ना, वो बाद में बुराइयों की तरफ आसानी से मुड़ सकते हैं।
ये आत्म प्रदर्शन वाली बात मुझे बच्चों के एक और खेल की याद दिलाती है, चोर और कोतवाल।
अरे हाँ, ये तो लगभग सभी बच्चे खेलते हैं,
है ना? उसमें वो कैसे न्याय, पकड़ धकड़ और फिर सजा देने का पूरा अभिनय करते हैं। कभी कभी तो अपनी कल्पना से कहानी भी जोड़ लेते हैं।
जी,
और ये खेल सिर्फ नकल नहीं है, ये दिखाता है कि बच्चों में अच्छी संभावनाएं होती हैं। न्याय की समझ, व्यवस्था की जरूरत, ये सब उनमें स्वाभाविक रूप से होता है।
तो इन खेलों को भी सही दिशा देने की जरूरत है।
बिल्कुल, अगर इन भावनाओं को, इन खेलों को सही मार्गदर्शन मिले तो उनमें एक योग्य नागरिक के गुण विकसित हो सकते हैं, वरना यही ऊर्जा गलत रास्ते पे जा सकती है।
बिल्कुल।
अच्छा, खेलों और भावनाओं के अलावा बच्चों की इच्छाएं, श्रद्धेया जीजी इन्हें जीवन शक्ति कहती हैं।
ये भी एक बड़ा पहलू है।
हाँ, और मनोविज्ञान भी यही मानता है कि इच्छाएं शरीर पर हावी होती हैं, उन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकते।
बल्कि फ्रॉइड ने तो ये भी कहा था कि अगर इच्छाओं को दबाया जाए
तो वो दोगुनी ताकत से विद्रोह करती हैं, पलट कर आती हैं।
तो फिर क्या करें, हानिकारक इच्छाओं को कैसे संभालें?
यहीं पर श्रद्धेया जीजी एक बहुत ही व्यवहारिक रास्ता बताती हैं। दमन नहीं मोड़ना, मतलब रिडायरेक्शन।
रिडायरेक्शन
कैसे?
जैसे मान लीजिए कोई बच्चा चाय पीने की जिद करता है, शायद कहीं देखकर सीख लिया हो। अब उसे डांटने या मना करने की बजाय उसे चाय के नुकसान बताएं और साथ ही दूध या किसी और पौष्टिक पेय के फायदे गिनाएं, उसे एक बेहतर विकल्प दें।
अच्छा,
तो आप कह रहे हैं कि तर्क से समझाने पर बच्चा मान सकता है? हाँ, ज्यादातर मामलों में बच्चे तर्क समझते हैं, उन्हें प्यार से उनकी भाषा में समझाना होता है। हानिकारक इच्छा को एक मिलती जुलती पर अच्छी इच्छा की तरफ मोड़ देना।
ये मोड़ने वाला विचार काफी शक्तिशाली लगता है। इसी तरह बच्चों में अच्छी रुचियां मतलब हॉबीज विकसित करना, जैसे बागवानी, खेलना, कुछ बनाना, ये भी उन्हें बुराइयों से बचाता है।
निश्चित रूप से, बच्चे स्वभाव से ही क्रियाशील होते हैं, एक्टिव होते हैं। अगर उन्हें किसी रचनात्मक काम में नहीं लगाया गया
तो वो अपनी ऊर्जा तोड़फोड़ में लगाएंगे।
बिल्कुल, या शरारतों में। यहीं पे फ्रायड का उदात्तीकरण यानी सब्लिमेशन का सिद्धांत भी लागू होता है।
उदात्तीकरण, सब्लिमेशन, ये क्या है?
इसका मतलब है कि जो प्रवृत्तियां नकारात्मक लगती हैं उनकी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में मोड़ देना।
कोई उदाहरण देंगे?
जरूर। जैसे कोई बच्चा है जो बहुत गुस्सैल है या झगड़ालू है, अब उसकी इस ऊर्जा को डांट डपट कर दबाने की बजाय क्यों ना उसे स्काउटिंग या एनसीसी जैसे किसी ग्रुप में शामिल किया जाए।
अच्छा, उससे क्या होगा?
हो सकता है उसे वहाँ नेतृत्व की कोई जिम्मेदारी दे दी जाए, तो वही ऊर्जा जो पहले झगड़े में लग रही थी अब टीम को लीड करने में, अनुशासन में लगने लगेगी।
अरे वाह, मतलब बुरे गुणों का भी अच्छा उपयोग हो सकता है।
हाँ बिल्कुल, जैसे गंदी खाद फसल के लिए कितनी उपयोगी होती है। जरूरत है बस स्नेह की, सहानुभूति की और बच्चों की जिज्ञासा को जगाए रखने की। और हाँ, छोटी से छोटी अच्छाई की भी तारीफ जरूर करें।
सही कहा। और एक आखिरी बात जो पुस्तक में कही गई है, बच्चों को व्यस्त रखना।
हाँ, ये बहुत बहुत जरूरी है, उन्हें किसी ना किसी काम में लगाए रखना, भले ही उसका कोई तात्कालिक बड़ा उपयोग ना दिख रहा हो।
इसका कोई उदाहरण भी दिया है क्या पुस्तक में?
जी, पंतनगर विश्वविद्यालय का उदाहरण दिया गया है। वहाँ लगातार छोटी छोटी परीक्षाएं होती रहती हैं।
अच्छा, उससे क्या होता है? कामों में व्यस्त रखना,
यही उनके स्वस्थ विकास की कुंजी है।
बिल्कुल।
और चलते चलते एक विचार शायद हम श्रोताओं के लिए छोड़ सकते हैं, अगर हम, मतलब परिवार और समाज, मिलकर बच्चों की छोटी छोटी अच्छाइयों को पहचानें, उन्हें लगातार प्रोत्साहित करें और उन्हें ऐसे मौके दें जहां वो सकारात्मक रूप से व्यस्त रह सकें, तो क्या हम एक ऐसी पीढ़ी नहीं बना सकते जो आत्मविश्वास से भरी हो, प्रतिभाशाली हो और बुराइयों से स्वाभाविक रूप से दूर रहे।
हाँ, इस पर सोचना जरूरी है। बहुत खूब।